श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं। आज मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 का विषय है यहोवा के दिन और धार्मिकता के सूर्य की भविष्यवाणी। इब्रानी भाषा की बाइबल में मलाकी की पुस्तक में अध्याय 4 नहीं है, अध्याय 3 के साथ ही उस पुस्तक का अंत होता है। अध्याय 4 अध्याय 3 के साथ ही जुड़ा हुआ है। अध्याय 4 में यहोवा का दिन और धार्मिकता के सूर्य की भविष्यवाणी की गई है। धार्मिकता का यह सूर्य यहोवा का दिन लाता है। पद 1 महाक्लेश का सजीव वर्णन है। आइए हम मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। मेरे मित्रों, यह यहोवा का दिन है। आगे कहता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में वे भस्म हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की 1/4 नष्ट हो जाएगी। आगे लिखा है, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। इस पद का अभिप्राय यह नहीं कि मृत्यु सब उद्धार से रहित मनुष्यों का अंत है। यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार चाहे उधार प्राप्त हो या उधार से रहित हो, मृतक शरीर कब्र में जाएगा और आत्मा अनंत काल के लिए या तो स्वर्ग जाएगी या नरक में जाएगी। मेरे मित्रों, इस पद के अनुसार उधार से रहित मनुष्य महाक्लेश का दंड भोगेंगे और पृथ्वी पर से हटा दिए जाएंगे। आगे लिखा है मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। पुराने नियम में धर्म का सूर्य वही है जो नए नियम में ज्योतिर्मय भोर का सितारा है। तथापि प्रभु यीशु को नए नियम में धर्म का सूर्य और पुराने नियम में ज्योतिर्मय भोर का सितारा कभी नहीं कहा गया है। हम थोड़ी ही देर में इस पद को अधिक गहराई से देखेंगे, इसका कारण भी देखेंगे। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब दुष्टों का नाश किया जाएगा। वह उन्हें कुम्हार के बर्तन के समान टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह धर्मशास्त्र की भाषा है और यदि आपको पसंद ना आए तो बहुत ही कठोर है। मलाकी 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। मलाकी की इस भविष्यवाणी के अनुसार इसराइल ऐसे युग में होगा जब परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंचेगा, और 400 वर्ष बाद एक और जकरिया होगा जिसे मंदिर में सेवा करते समय जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन देकर यहोना बपतिस्मा देने वाले के जन्म का संदेश सुनाएगा। इसे हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 5 और 25 पद में पढ़ते हैं। तब जाकर 400 वर्ष का मौन तोड़ा जाएगा। इस बीच इसराइल को मूसा की व्यवस्था का पालन करना होगा, वही उनका जीवन होगा, वही उनके जीवन का आधार होगा, वही उनके लिए परमेश्वर का वचन होगा। वे तो मूसा की व्यवस्था के अधीन ही थे। आगे मलाकी कहता है 4 अध्याय के 5 पद में, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 से 12 में अंत समय में आने वाले दो गवाहों का उल्लेख किया गया है। मैं दूसरे गवाह के बारे में तो नहीं जानता, परंतु एक तो लगभग निश्चित है कि वह एलिय्याह होगा। यहूदियों के फसह में एक अतिरिक्त कुर्सी रखी जाती है जिस पर कोई नहीं बैठता है। यह कुर्सी एलिय्याह के लिए होती है, चाहे वह जब भी आए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था तब लोग उसे एलिय्याह समझ रहे थे, परंतु वह किसी भी अर्थ में एलिय्याह नहीं था। धर्मशास्त्र में उसके एलिय्याह होने का अस्पष्ट संकेत है, परंतु वास्तव में वह था नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि प्रभु यीशु उस समय अपना राज्य स्थापित करता तो अति संभव था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह गवाह हो सकता था। यह कैसे होता मैं नहीं जानता, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था। यह एक ऐसा कल्पना का प्रश्न है कि उसका उत्तर पाना बहुत कठिन है। लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े दिन और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह नहीं था, क्योंकि वह संसार के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की घोषणा कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 पद में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह आने वाले यहोवा के भयानक दिन की घोषणा से भिन्न है। तब हम मलाकी 4 अध्याय उसके अंतिम पद 6 में पढ़ते हैं, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मेरे मित्रों, पुराने नियम का अंतिम शब्द है सत्यानाश। आदम और हवा ने जब अदन की वाटिका में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी तब परमेश्वर ने कहा था कि उनके ऊपर शाप है और भूमि भी शापित है। यह शाप पाप है, और जब तक प्रभु यीशु फिर से पृथ्वी पर ना आए इसका निवारण नहीं होगा। यह आज की मानव जाति पर है। आपको अपने चारों ओर देखना है और यह शाप दिखाई देगा। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां दीमक या पेड़ पौधे, सब्जियां या वस्तुओं को नाश करने वाले कीड़े हैं, आप स्थिति को देख सकते हैं, तो आप प्रभु राज में प्रवेश कर चुके हैं। आप देखेंगे कि वे कीड़े नाश हो जाएंगे, वे वहां पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। और यदि आपके समाज में पाप नहीं है तो निश्चय ही आप प्रभु राज में हैं। परंतु आज मानव जाति और पृथ्वी पर पाप का राज है, न कि प्रभु का। पुराने नियम का समापन बड़ा ही दुखद है, परंतु यह स्पष्ट है। पुस्तक में हमें बताया गया है कि किस प्रकार अंत होगा। अतः मेरे विचार में इस अध्याय के पद 2 पर हमें विशेष ध्यान देना है। कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। पुराना नियम निराशा ही नहीं महान आशा के साथ समाप्त होता है। यद्यपि सूर्यास्त हो गया है और अंधकार छा गया है, एक नए दिन का उदय होने वाला है। आज हम पाप के अंधकार में हैं और संपूर्ण संसार अंधकार से घिरा हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत ही गहरा अंधकार है। परंतु एक दिन धर्म का सूर्य उदय होगा और इस ग्रह पर आत्मिकता का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे प्रियो, धर्म का सूर्य प्रभु यीशु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मैं आपका ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और गंभीर बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुराने नियम में मसीह को धर्म का सूर्य कहा गया है, परंतु नए नियम में वह सर्वथा भिन्न रूप में प्रकट किया गया है, ज्योतिर्मय भोर का सितारा। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 पद में, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का समापन है। दाऊद का मूल और वंश अर्थात पृथ्वी का शासक, परंतु वह भोर का चमकता हुआ सितारा है। प्रसंगवश यह एक नई बात है। मेरे प्रियो, यह बड़ी ही रोचक बात है कि मनुष्य आकाश के प्रति सदैव आकर्षित रहा है। खगोल शास्त्र सबसे पुराना विज्ञान है, परंतु इसका मूल वास्तव में कल्पनाओं, अंधविश्वास और रहस्यों से जुड़ा रहा है। आप कहेंगे पहले तो मनुष्य अज्ञानी था, परंतु आज इस विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। क्या यह सच है? आज जितने लोग राशिफल और जन्म कुंडली में विश्वास करते हैं, उतने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आज हम शैतान की उपासना सबसे अधिक देख रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व के सर्वेक्षण से पता चला था कि केवल 3% लोग मानते थे कि शैतान है, परंतु आज 37-48% लोगों का मानना है कि शैतान है, जिनमें से कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है जिसके समक्ष वे लेखादाई हैं, परंतु वे कम से कम शैतान को तो मानते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य पहले तो आकाश की सुंदरता के कारण ऊपर निहारता था। उस समय दूरबीन नहीं थे। दूरबीन के आविष्कार से आकाश का अध्ययन अधिक बढ़ गया है, परंतु धर्मशास्त्र लगातार मनुष्य को आकाश की ओर देखने की प्रेरणा देता है। भजन संहिता 8 उसके 3-4 पद में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागणों को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इसका उत्तर है कि मनुष्य आकाश को देखता है और परमेश्वर की स्तुति करता है, उसका महिमान्वन करता है। भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उत्पत्ति 15:5 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मलाकी की पुस्तक में पुराना नियम समाप्त होता है और परमेश्वर मनुष्य को आदेश देता है कि वह आकाश पर दृष्टि डाले और आकाश को निहारना अच्छा ही है। मलाकी की पुस्तक का अंत एक झटके के साथ होता है, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं, और मानव इतिहास के पूरा होने से पूर्व ही पर्दा गिर जाता है, मनुष्य पर अंधकार छा जाता है, परंतु दिन और रात मनुष्य अपने जीवन में उलझा रहता है। मेरे प्रियो, अच्छे लोग तो हैं, बुरे लोग भी हैं। अभी तक अच्छाई की विजय नहीं हुई है। परमेश्वर कहता है, आकाश को निहारो, चूकना नहीं, आकाश को देखना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। यह सूर्योदय की प्रतिज्ञा है। यह एक गीत है जिसके अनुसार संसार सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कलीसिया किसी और की प्रतीक्षा में है। एक और गीत है, भोर समुद्र के पार से गरजती हुई आती है। जब धर्म का सूर्य प्रभु यीशु फिर से आएगा, तब वह पूर्व से गरजता हुआ आएगा कि अधर्म का नाश करे। पुराना नियम आशा की पुस्तक है, और यदि वह अकेला ही हो तो घोर निराशा की पुस्तक है, परंतु वह आकाश की ओर संकेत करता है और प्रभु यीशु धर्म के सूर्य की चर्चा करता है। यह प्रभु यीशु का अति उचित चित्रण है, क्योंकि वह एक नया दिन लाएगा और मनुष्य के पाप की काली रात का अंत करेगा। यहोवा का दिन आने वाला है और उसका राज्य पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। संपूर्ण पुराने नियम में परमेश्वर को सूर्य कहा गया है। देखिए भजन संहिता 84:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। और तब यशायाह नबी की पुस्तक 60:19 में लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। पुराने नियम में उसका कैसा महान चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर नया नियम इसकी पूर्ति है और इसका अंत एक भिन्न आशा से होता है। मैं इस महान पद को दोहराना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22:16 लिखा है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। वह धर्म का सूर्य ही नहीं, भोर का चमकता हुआ तारा भी है। यह बड़ी रोचक बात है कि नया नियम धर्म के सूर्य के साथ आरंभ नहीं होता है। सबसे पहले घोषणा जकरिया को अकेले में की गई थी, तब यहूना बपतिस्मा देने वाले के आगमन की भविष्यवाणी की। वह आने वाले मसीह का अग्रगामी था, मसीह जो कुंवारी मरियम से जन्म लेने वाला था। ज्योतिषियों ने यरूशलेम आकर किसे पूछा? मत्ती रचित सुसमाचार 2:2 में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्या यह एक रोचक बात नहीं है कि सूर्य पूर्व से निकलता है? परंतु इन पूर्व देश के रहने वाले ज्योतिषियों ने सितारा पश्चिम दिशा में देखा था। उन ज्योतिषियों ने मसीह के जन्म को सितारे से कैसे जोड़ा? बहुत समय पहले गिनती की पुस्तक में उल्लेख है कि विलाम ने पूर्व देश मोआब में भविष्यवाणी की थी, गिनती की पुस्तक 24:17 में, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। मेरे प्रियो, सितारा राजदंड से सदैव अलग रखा गया है, सितारा सूर्य से भी अलग रखा गया है। सितारा मसीह के आगमन का चिन्ह है। जब वह अपनी कलीसिया को संसार से उठाने के लिए आएगा, सूर्य उसके पृथ्वी पर पुनः आगमन का चिन्ह है। प्रेरितों के काम 1:11 में प्रभु यीशु के शिष्यों से कहा गया था, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जकरिया कहता है कि जब वह आएगा तब उसके पांव जैतून पर्वत पर होंगे, अर्थात जैतून पर्वत को छुएंगे, जकरिया के पुस्तक 14:4 में। अतः सितारा उसके आगमन का चिन्ह है। जब वह कलीसिया को लेने आएगा, उस समय वह पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। जब वह पहले आया था तब उसका संपूर्ण कार्य सितारे में व्यक्त था, धर्म के सूर्य में नहीं। यह उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु मुख्य विषय था। यह बड़ी विचित्र बात है कि उसने अपने जन्म को स्मरण करने के लिए कभी नहीं कहा, परंतु अपनी मृत्यु को स्मरण रखने के लिए अवश्य कहा था। और फसह का भोज जो लगभग समाप्त होता जा रहा है। प्रभु भोज की स्थापना लुकार्ची सुसमाचार 22 अध्याय के 19 पद में हम पाते हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अतः प्रभु यीशु का जन्म और मृत्यु उस सितारे द्वारा व्यक्त है। सितारा उसके जन्म के स्थान ही का नहीं, उसकी मृत्यु को भी दर्शाता है कि वह क्यों मरा। सितारा बताता है कि वह कौन है और वह क्यों आया है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 7 पद में वह कहता है, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, सितारा चरनी की ओर संकेत करता है, परंतु वह क्रूस की ओर भी संकेत करता है। सितारा उस तथ्य का वर्णन करता है कि वह आपके और पापों को क्रूस पर उठाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तब अमेरिका में लोग अपनी खिड़कियों में नीले रंग का सितारा लगाते थे, परंतु जिस घर से कोई युवक सेना में था, तब वह सुनहरा सितारा होता था, जिसका अर्थ था कि उस घर ने देश के लिए अपना पुत्र मरने को दे दिया है। एक छोटा लड़का यह सब देखता हुआ अपने पिता के साथ जा रहा था। वह शाम का समय था। जब वे चलते चलते खुले स्थान में आ गए, तब आकाश में संध्या का सितारा चमकने लगा था। उसने अपने पिता से कहा, पापा देखो, परमेश्वर ने भी अपना पुत्र दे दिया। जी हाँ, परमेश्वर ने भी अपना पुत्र दे दिया और सितारा उसका चिन्ह है। वह बालक सही कह रहा था। इतिहास में दो विश्व युद्ध हुए हैं, परंतु उनसे क्या लाभ हुआ? क्या संसार दासत्व से मुक्त हुआ है? युद्ध जीतकर हम वास्तव में विजय से हाथ धो बैठते हैं। पाप के विरुद्ध युद्ध करने में प्रभु ईश्वर ने अपनी जान गंवा दी थी, परंतु उसने मनुष्य को जीवन दिया, मनुष्य को पाप से मुक्त कराया और मृत्यु और कब्र पर विजय प्राप्त की। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 53 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। जी हाँ, हमारा भविष्य सितारों में नहीं है। मेरे प्रियो, जूलियस सीजर नामक एक नाटक था जिससे नायक उपनायक से कहता है, प्रिय ब्रूटस, दोष हमारे सितारों का नहीं है, हमारा है कि हम अकिंचन मनुष्य हैं। आपका न तो भविष्य सितारों में है, न ही वर्तमान। यदि आपको वर्तमान में सहायता चाहिए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए विजयी जीवन जीना होगा, जिसने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या आप हारे हुए और निराश हैं? मेरे मित्रों, सितारों में आपको सहायता नहीं मिलेगी। यदि आप इन बातों में विश्वास करते हैं, तो आप किसी अन्य जाति एवं अंधविश्वास में हैं। प्रभु यीशु से आशा रखें। वह जादुई झंडा नहीं है, वह किस्मत का खेल भी नहीं है, वह संयोग की बात नहीं है, वह अंधविश्वास नहीं है, वह भाग्यवाद नहीं है। यदि आप अपने जीवन में हताश हैं, यदि आप किसी आदत के दास हैं, नशा, बेईमानी, क्रोध, यौन वासना या सांसारिकता, यदि आप आत्मिक बातों के प्रति निराश एवं उदासीन हैं, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आप प्रभु यीशु के पास आएं? प्रभु यीशु के पास आपके लिए समाधान है। मेरे प्रियो, यदि आप में भविष्य के लिए आशा नहीं है, तो आप पूर्व काल में 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु का स्मरण करें कि वह आपके और मेरे पापों के लिए मरा था, और आप उस पर अपना उद्धारकर्ता होने का विश्वास कर सकते हैं। तदुपरांत आप अपना चेहरा सूर्योदय की ओर करें, क्योंकि भोर का चमकता हुआ तारा एक दिन चमकेगा। क्या भविष्य की कोई आशा है? मेरे मित्रों, भोर का चमकता हुआ सितारा सूर्योदय के पूर्व प्रकट होगा। मेरे घर में 4 खिड़कियां हैं, जिनसे मैं सूर्योदय को देख सकता हूं। सूर्योदय से पहले भोर का सितारा दिखाई देता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। आज कलीसिया का भोर का सितारा प्रभु यीशु है। यह समझना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पत्रस यही तो कहता है, दूसरा पत्रस की पत्री 1:19 में, हमारे पास जो भविष्यद वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। परंतु उस दिन सितारा कलीसिया के उठाए जाने का प्रतीक है। जब प्रभु यीशु कलीसिया को पृथ्वी से उठा ले जाएगा, कलीसिया का उठाया जाना कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसके चिन्हों का उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे प्रियो, महान प्रचारक जॉन वेस्ली कहते थे, वह ऐसे प्रकट होगा जैसे भोर के प्रकाश के पूर्व दिन उदय होता है। समय निर्धारित न करें, हर एक घंटा उसके आगमन की आशा रखें। इस समय वह निकट ही है, वरन द्वार पर ही है। अय्यूब ने कहा 38:7 में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, फिर परमेश्वर के इस जगत में पाप आ गया। परंतु वह दिन आएगा जब वह दिन का सितारा प्रकट होगा और वह कलीसिया को ले जाएगा। यह एक संकेत होगा कि सूर्य अति शीघ्र उदय होने वाला है, तथापि यह सूर्य धर्म का सूर्य होगा, प्रभु यीशु मसीह। मेरे मित्रों, अब हम पुराने नियम के समापन पर हैं, जहां आशा है प्रभु यीशु का पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने का। परंतु नए नियम में हमें उन ज्योतिषियों के समान होना है जो सितारे को देख रहे थे। हम अब भी दिन के सितारे को देख रहे हैं कि वह प्रकट हो और कलीसिया को संसार से उठा ले जाए। क्या आप आज उस सितारे को देख रहे हैं? आज से देखना शुरू करें, क्योंकि वह शीघ्र आने वाला है। मेरे प्रियो, इसी अध्ययन के साथ हमारा पुराने नियम का पुस्तक समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अत्यधिक लाभ और आत्मिक आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो, आपकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।